Govinda, Govinda, ज्ञानत्विरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां शरणं। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 41 अध्याय हम लोग अभी सुन रहे थे कि अक्रूर जी कृष्ण और बलदेव को साथ लेकर ब्रज से नंदगांव से मथुरा ला रहे हैं। अक्रूर जब गए नंदगांव में तो कृष्ण के चरण चिन्हों को देख करके उन पर लौट गए और प्रार्थना करने लगे, ये कृष्ण क्या हमें चाचा कहेंगे, प्यार करेंगे, हमारा अभिवादन स्वीकार करेंगे? आज हमारा और भाग्य है कि भले ही कंस की प्रेरणा से हो मैं मथुरा में आया और कृष्ण ब्रज में आया और कृष्ण के चरणों को दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। अभी तक वो ज्ञान नेत्र से देख रहे थे, उनको कुछ ज्ञान था जो नारायण का प्रवेश इनमें कभी कभी होता है, नारायण सम इनके गुण हैं, कहाँ से सुना, गर्गाचार्य इत्यादि ऋषि के से सुना था, इसलिए उनके में उनकी श्रद्धा तो थी और उनको भगवान के समान ही आदर दे रहे थे, उनके चरणों के प्रति ऐसी था और लोग लौट गए और फिर रात में कृष्ण का दर्शन किया और सचमुच में जैसी वो भावना कर रहे थे ऐसे ही कृष्ण और बलदेव जी उनसे मिले, चाचा चाचा कहा और जब उनके चरणों में गिरने लगे तो गिरने नहीं दिया, जैसे कि किसी पूज्य व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, रोक लिया और गले में उनको लगा लिया, आंखों में से आंसू झरने लगे, हृदय उनका द्रवित हो गया। इसके बाद में उन्होंने कहा उनके संबंध में, वसुदेव देवकी के संबंध में उत्तेजित किया उनको, आप वसुदेव और देवकी के लड़के हैं, और फिर ये सब जो बातें हुई बीच वाली मैंने आप लोगों से बतलाया। जब अक्रूर घाट पर आए, जमुना हृदय में आए, ब्रह्म हृदय में जिसको जहाँ पर यज्ञ पत्नियाँ इत्यादि थीं वहाँ आए तो जमुना में वो स्नान करने के लिए गए और दृश्य के संबंध में बतलाया जो वहीं से कृष्ण और बलदेव जो ब्रज वाले थे लौट गए और वसुदेव जी वहाँ पर रथ में बैठ गए, वसुदेव नंदन कृष्ण और बलदेव जी बैठ गए और अब उनको अनुभूति हुई, समाधि में देखा उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, ये कृष्ण बलदेव और कुछ नहीं ये उनके इष्ट देव ही हैं, वो गर्भोदशायी विष्णु जो सबसे बढ़कर के तत्व है, उनसे बढ़कर के कोई तत्व नहीं है। उन्होंने कृष्ण को तत्व नहीं समझा। अब इनको हुआ कि कृष्ण कौन है, हमारे आराध्य देवी तो हैं, वो गर्भोदशायी विष्णु है, शंख चक्र का गदा पद्मलिका उनका मूल रूप है, किंतु ये कृष्ण वही है। अभी अपने रूप को छिपा करके लोगों के सामने ये नर रूप धारण करके आए हैं। अब उनकी अनुभूति कि वो तो यही है। अब उनको ये हुआ कि कृष्ण ये जो हैं हमारे इष्ट देव हैं, अब साजी कंस को मार सकते हैं, धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे और सब काम कर सकते हैं। अब इनको पूर्ण विश्वास हो गया, पहले विश्वास नहीं था उस तरह का, अब उनको विश्वास हो गया कि ये साधारण बालक नहीं, ये तुम जरूर मारेगा उसको, धर्म की प्रतिष्ठा करेगा। अघटन घटन पटेशी वाला ही हमारे ये हैं, जिनके नाभि से ब्रह्मा निकले हैं, अब ब्रह्मा ये सब सृजन हुआ है और ये हमारे अनंत देव ही समस्त प्रकृति के आधार हैं। और ये जो तत्व हैं, 26 तत्व हैं, कहाँ क्या महत्त्व पहला और उससे निकला हुआ अहंकार, फिर उसे मन बुद्धि अहंकार चित्त, और फिर उसका स्थूल रूप पंचभूत और पंच तन्मात्राएं। पंचभूत क्या, क्षित जल पाओ गगन समीरा, और तन्मात्राएं क्या, ये और फिर पांच इंद्रियां और पांच उसके विषय, ये 10। तो 10 10 20 मन एक एक ही, और ये एक ये हो गया, ये 24 हो गए। और इसके बाद में प्रकृति और पुरुष, और इसके बाद में जीवात्मा, अंत में परमात्मा। परमात्मा ये परमात्मा कौन है, हमारे वो अनंत जो हैं गर्भोदशायी विष्णु, उन्हीं से ये सब कुछ निकलता है। और इसी रूप में उनकी स्तुति की। कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, ब्रजेंद्र नंदन हैं, गोपी कांत हैं, वृंदावन में रास करने वाले हैं, और ये ऐसे ऐसे लाखों गर्भोदशायी के मूल हैं, इनकी धारणा में भी ये नहीं आया। कृष्ण ही आए हैं हमारे वो आराध्य कृष्ण के रूप में। उनको अभी अब पता पीछे हो सकता है या नहीं भी हो, ये वो कृष्ण है मूल, कृष्ण से बलदेव जी, बलदेव जी से फिर उनका आदित्य चतुर्व्यूह, उसमें में द्वारका में मूल संकर्षण, फिर महासंकर्षण परब्रह्म में, और महासंकर्षण से कारण साई एक, और उनसे अखिल विश्व ब्रह्मांड सब निकला, और उनके कोटि कोटि अंशों में से एक अंश है हमारे आराध्य सहर्ष सीसा पुरुष। अभी तक नहीं जान पाए हैं जो कृष्ण कौन तत्व हैं। ऐश्वर्य माधुर्य था उसमें, ऐश्वर्य कुछ था, अब पूरा ऐश्वर्य में आ गए। अब उनको ये विश्वास हो गया, ये तो कंस इत्यादि का इस क्षण मात्र में उनकी इच्छा से हो सकती है, इनका लीला विलास है। धर्म की प्रतिष्ठा करना, असुरों का दलन करना ये मुख्य उद्देश्य नहीं। भक्तानाम विनोदायक करोम यदि विधा क्रिया, ये तो लीला विलास भक्तों का विनोदन करने के लिए कर रहे हैं। वो तो क्षण मात्र में असुरों का दलन कर सकते हैं, पृथ्वी की सारी सृष्टि स्थिति प्रलय को सब समाप्त कर सकते। अब निश्चिंत होकर के, अब अपना ये सब कार्य करके के निश्चिंत होकर के, बड़े गदगद होकर के, रोमांचित होकर के, और कृष्ण को बलदेव को लेकर के मथुरापुरी आए। इतने में ये जो विलंब हुआ, आनंद बाबा पहले ही छोड़ चुके थे अपने साथियों के साथ और सखाओं के साथ, वो लोग पहले पहुंच गए। कहाँ, वृंदावन दरवाजा है छठ पासी में, जहाँ पर की सरस्वती नदी के किनारे, उसको पार करके अंबिका का वो उस, हाँ उस समय मथुरा उधर में थी, वहाँ पर पहुँच करके डेरा लगा दिया, एक पेड़ के नीचे यमुना के किनारे डेरा लगा दिया, और सब वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में अक्रूर जी आए। अक्रूर जी ने उनसे निवेदन किया, प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप हमारे घर में पधारिए और वहाँ आज रात में रहिए, और फिर जैसा होगा कल रंग सभा होगी रंगमंच पर, आप वहाँ पर पधारें। कृष्ण जी नहीं, आज मैं पिताजी के साथ में यहीं पर छावनी में रहूँगा, डेरे पर रहूँगा और यहाँ का काम कुछ कर करके तब फिर तुम्हारे यहाँ चलूँगा, अभी नहीं। बस वहीं पर अपने पिताजी के पास में रह गए और वो अपनी गाड़ी छकड़े लेकर के जो गए थे लौट गए और कंस को खबर दिया कि मैं उनको ले आया। वो बहुत प्रसन्न हुआ, ठीक है, और अपने परिजनों से ये जितने असुर थे अगासुर बकासुर तो ये तो पहले मारे गए, चारुण मुष्टिक और उन लोगों से परामर्श करने कल कैसे काम करिया, ये सहज सहज रूप में प्लान बना। गेट पर रखा जाए मतवाले हाथी को, कौन सा कुबल्यापी को रखा जाए और महात्व्य ऐसे रखे जाए, और उसकी यदि वो कुछ गड़बड़ हो उसके लिए सारी सेनाएं वहां पर लगा दिए, तो चुने चुने हुए योद्धा रहे और वहीं पर वो हाथी उसको पीस डाले दोनों को, पर काम खत्म हो जाएगा। और यदि कुछ हुआ तब फिर अखाड़े में यदि आ जाए तो चारुण मुष्टिक इत्यादि सभी मिल करके और मैं भी आ जाऊंगा, बस कोई बात नहीं, उसको समाप्त कर दिया। परिकल्पना कर ली गई किंतु हुई है सोई जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ा वही सा होगा, तो वही जो होना है। अक्रूर जी तो वहां से चले गए। अब कृष्ण जब पहुंचे दोपहर का समय में तो वहां आए थे, वहां से 10 मिनट और 15 मिनट लगा हुआ यहां आने में। यहां आकर के नंद बाबा अपने घर से जो लाए थे मालपुआ और खीर तीर दूध सब सभी सब लोगों ने मिलकर के खाया पिया और डेरे में ही उन्होंने विश्राम किया। जब 4-5 बज गए कुछ छाया जैसी हुई, कृष्ण ने कहा पिताजी से, पिताजी आप आदेश करें, यह नगर भ्रमण कर रहा हूं, शाम को नगर भ्रमण कर रहा हूं। नंद भाई कहा अच्छा बेटा जाओ, मैं भी चलूं? नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सखा जितने थे दाम से दाम सुबल मधुमंगल इत्यादि और सब गांव वालों को, जब मथुरावासी लड़कों को पता चला जो आए हैं कृष्ण बलदेव आए हैं ये वसुदेव जी के पुत्र, अब उनको देखने की आई और सारे नगर में एक तरह से वो फैल गई बात कि कृष्ण बलदेव आए हैं और नगर सुभा देखने के लिए पधार रहे हैं। उस समय में लोगों में इतनी उत्सुकता बढ़ी कि गांव की नगर की जो महिलाएं थीं जो वहां विवाहित होकर के अभी किशोरी हैं वो तो झरोखों पर ऊपर में खड़ी हो गई, फूल और लाज लेकर, लाज होता है ना, खेई खेल लेकर के ऊपर से फेंकने के लिए, और जितने वहां पर लड़के थे एकदम पहुंच गए कृष्ण के यहाँ, हम चलेंगे दिखलाएंगे, हम चलेंगे दिखलाएंगे, सारा समाज वहां पर पहुंच गया यदुवंशियों का। इधर में जितने अंधे भी थे वो कहेंगे आज कृष्ण आ रहे हैं हम लोगों को भी चलना चाहिए, अंधा अंधे की लाठी पकड़ करके आंख नहीं रहने से भी देखने जाएंगे, क्या देखेंगे अंधा, तभी उत्सुकता ऐसी जगी कि हम चलेंगे देखने के लिए। वो लोग भी चल पड़े, कृष्ण नगर में प्रवेश किया, नगर में प्रवेश करके नगर को देखते हुए गलियों से रास्ते से आ रहे हैं। इतने में उन्होंने देखा सबसे पहला किसको, रजत जा रहा था, रजत जा रहा था गधों पर नए कपड़े रंग कर महाराज कंस के लिए लेकर के जा रहा था। कृष्ण और बलदेव जी ने देखा, सखा लोग जा रहे थे वो भी साथ में थे, कृष्ण ने उसको रोक कर कहा जी भैया हमारे कपड़े नहीं है, कंस से मिलने जाना है, रंगशाला में जो जाला है तो हमारे कपड़े तो ऐसे ही हैं, तो इसमें से कुछ कपड़े यदि दे दो तो हम लोग इसको पहन करके और वहां पर रंगशाला में प्रवेश कर ही जाएंगे। तो उसने उन्होंने कुछ उपेक्षा की और कहा जी ग्वार ग्वार और अहिरों के बेटे होकर के गोपों के कभी देखा होगा ऐसा कपड़ा, महाराज कंस का ये कपड़ा खबरदार ऐसा तो मत कहना, अभी कुछ कह दूंगा तो नालिश हो जाएगी और फिर तुम लोगों को पकड़े हुए मारे जाओगे। और ऐसा योग्य तो तुम हो नहीं, दरिद्र घर के और ऐसे घूमने वाले नंगे, और तुम इन कपड़ों का स्वप्न देख रहे हो, कुछ ऐसी तैसी भी कुछ गाली गलौज जैसे अपमान किया होगा कृष्ण का। तो कृष्ण ने क्या किया, बड़े सहज रूप से मुस्कुराते हुए हाथ थोड़ा सा लगा दिया, बस गिर गया, छूते ही गिर गया कृष्ण। तो मैं क्या कुछ जो छूते हुए उसका गिर गया। ये कंस का चर है, कृष्ण से मारा, ऊपर से दिखता दिखाई पड़ता है ये मारा 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 क्या मारा, ये तो शरीर मरेगा ही, किंतु कृष्ण के स्पर्श से हुआ क्या, उसकी आत्मा शुद्ध हो गई, सब कुछ शुद्ध। हतारी गत दायक है ना कृष्ण स्वयं, और ये कृष्ण है कौन, समस्त अवतारों के भी मूल अवतारी स्वयं आदि हैं, सबके अनादि भी हैं, और वो कृष्ण ये मथुरेश कृष्ण भी जो है वो भी समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, केवल कुछ रस का भेद है किंतु ये भी वही हैं। बस उसने छूते ही जिनके सुने से आंख के इशारे से उनके अंगों की हवा लगने से भी आदमी का मुक्ति हो जाएगी, बस साथ ही साथ उसके जितने पाप थे वो सब खत्म हो गए। और प्रेम से तो भजन किया था नहीं, इसलिए उसकी बस मुक्ति तक हुई, मुक्ति बस मुक्ति हुई। तब मुक्ति क्या होगी, मुक्ति क्या होगी, ये पुतना और उसके भैया अघासुर और बकासुर जैसे नहीं होगी। क्यों, उसमें कुछ कारण था क्या, वो किसी संबंध को लेकर के मरने गई, मैया बन करके गई, और मैया के ये दोनों भाई हैं इसलिए इनको स्वरूप ये साइज मुक्ति नहीं हुई, उनको हो क्या स्वरूप मुक्ति, और उसको तो धात्री गति उचित हुआ। अच्छा इसकी गति क्या होगी, आप लोग निर्णय कीजिए। तो साइज मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो यदि होते दूसरे दूसरे स्वरूप तो हो सकता है जो कुछ हो, और भजन साधन तो किया नहीं, लीन तो ऐसा दिखता है किंतु लीन होने पर भी लीन नहीं होता है, जैसे चिड़िया घोंसले में लीन हो गई। तो इसकी साइज न हो करके कुछ ऐसा ही कुछ रूप देखा ना, तो रूप देख करके चिंतन किया होगा कि नहीं मारते समय में, इसलिए सारूप फिर जैसी हो जाएगी। सारूप तक पहुंच सकता है, लिखा नहीं है कहीं, किंतु कृष्ण इतने दयालु है ना, कृष्ण स्वयं नहीं दे सकते, तो इनकी विशेषता क्या रह जाएगी और लोगों से, इसलिए उसको सारूप्य दे सकते हैं, शास्त्री दे सकते हैं, सालोक्य दे सकते हैं, ऐसा ही सालोक में ब्रज का सालोक्य नहीं देंगे, वो देंगे तो वो ब्रह्म लोक में उनकी शंकर से थोड़ा ऊपर लेकर के उनको गति दे देंगे। इसके बाद में कृष्ण सखाओं के शाखाओं को बड़ा उल्लास हुआ, उसको वहीं पर छोड़ दिया और आगे और कपड़े ले लिए, गधे जिधर तिधर भागे, उनको जो जरूरत थी सब बच्चों ने अपने अपने लिए कपड़े चुन लिया, पहनना भी नहीं लिया, ऐसे ऐसे कुछ बड़े हैं कुछ ऐसे हैं। और थोड़ी देर में चले तो देखा ही पड़ा एक सुदामा दर्जी, सुदामा नाम था, सुदर्शन वो मिला। कितना बजा भाई, समय पर भी ख्याल रखना। अब उसके पास में उपस्थित हुए, देख करके हुआ, अरे भैया हमारे शरीर जैसा माप करके इसको ठीक ठाक कर देगा। ये लंबी लंबी ये अंगरखा नहीं, वो कपड़े दुषा दुपट्टे, कृष्ण का दुपट्टा और कंस का दुपट्टा तो एक होगा नहीं, तो ये दुपट्टों को भी बराबर काट दो। और हमारे जो कुर्ते हैं उसको भी अच्छी तरह से कर दो, और कपड़े भी हैं रेशमी हैं और अच्छे अच्छे हैं राजकीय वस्त्र हैं, हमारे अंगों का जैसा बना दो। बस साथ ही साथ उसने देकर के मुग्ध हो गया, अमुग्ध होकर के देखता है जैसे आपके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा। इसकी बुद्धि थोड़ी सी कुछ सेवा की बुद्धि रही। क्योंकि क्योंकि वो कुछ वैसे चित्तवृत्ति खाता है, इसकी कुछ सेवा की प्रवृत्ति थी। यदि थोड़ी सी भी सेवा की प्रवृत्ति रहे और कृष्ण से संबंध हो जाए तो उसकी बड़ी ऊंची गति हो जाती है। इसलिए इसने उनके मपे तुले सब कपड़े चपड़े सब ठीक दिए, सखाओं के भी कर दिए, बलदेव जी भी कर दिए। अब तो देख करके बहुत अच्छे सजने लगे अपने आप, और वहां से उसके सिर पर हाथ रख दिए, वो तो कृतकृत्य हो गया। उसका उस जन्म भी बन गया और पीछे का जन्म भी बन। हो सकता है कि उसको अपने किसी जगह में वैकुंठ इत्यादि में वो उसी का सेवा उसको वहां पर दे दी। गरीब नहीं बैठी वहां पर, स्वाभाविक फूल इत्यादि जो हैं, स्वाभाविक वहां की जो प्रकृति है वो माधुर्य भाव का द्योतक है। और ये यह राजसी इत्यादि नए नए कपड़े हैं ना, नए नए कपड़े वो ब्रज में तो गैया चराते हैं, माधुर्य भाव। अब यहाँ पर वैभव उन्होंने ग्रहण किया, वैभव भाव उन्होंने ये दिखलाया ये यथार्थ में संसार वाले इस वैभव के मालिक नहीं है, इसका भोक्ता तो मैं हूँ। ये भी तो दिखलाऊं मैं ही भक्त इसका भोक्ता हूँ, ये नहीं है। स्त्रियों का भी भोक्ता नहीं है, पुरुषों का भी भोक्ता नहीं है, असल में मैं शब्दों का उपभोक्ता हूँ। सब विश्व के ब्रह्मांड के समस्त वस्तुओं का मैं उपभोक्ता हूँ, इसलिए उन्होंने उसे ले लिया। अब उसको क्या दिया होगा तो अब यही समझिए, यदि शत्रु भाव से कोई आया उसको भी मुक्ति दे दिया, इसको मुक्ति देंगे नहीं, इसको बैकुंठ से नीचे गति नहीं बल्कि इसको गोलोक में दिए होंगे। गोलोक जो द्वारका से नीचा है वहां पर गोलोक की गति दे दी, उनकी सेवा का अवकाश कुछ दिया होगा। तत्पश्चात और आगे बढ़े और भी कितने कितने मिले, इतने में कुब्जा शायद आई चंदन लेकर के और वो जा रही है। मुखमंडल बड़ा सुंदर है, अभी किशोरी है 16-17 वर्ष की, हाथ में चंदन का थाल है, अंगरा के जितने भी हो सकते हैं वो सब लिया, बड़े सुगंध उसमें से आ रहे हैं। वो प्रतिदिन जाती और कंस को अंगरा लगाती है, उसमें हो सकता है कि मृगनाभी हो, केसर जिसको कहते हैं है? कस्तूरी हो, केसर हो, ये सब चीजें हो लेकर के जा रही। कृष्ण ने देखते ही मुस्कुरा करके कहा ऐ सुंदरी ये क्या हमको लगा सकती है, और वो देखते ही कि हुआ क्या ठिठक करके खड़ी हो गई और देखती ही रह गई, अरे देखती क्या है हमें लगाएगी। तो उसने कहा आपको नहीं लगाएंगे तो किसको लगाएंगे। कृष्ण को बैठा दिया, पहले से कपड़े सुसज्जित तो ही हैं, और सुंदर उसे अंगरा किया, अपने स्पर्श पाकर के वो धन्य हो गई। उसके अंगों में अंगराग में जो सुगंध था कृष्ण के अंगों में तो उसे कोटि कोटि गुण सुगंध, और उनके अंग स्पर्श से हुआ क्या जबकि कंस की मैया पद्मा बूढ़ी जरठ 152 वर्ष की, और उसको कृष्ण के दर्शन से जबकि काम का तरंग उठा, तो ये कैसे अपने काम को तरंग को रोक सकती है। बस मुग्ध हो गई, अपना हृदय कृष्ण को दे डाला, और जब अंगराग समाप्त हो गया, कृष्ण को दर्पण दिखलाया, बलदेव जी को दर्पण दिखलाया, तो कृष्ण के दुपट्टे को उसने पकड़ लिया। कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए अपने काम भाव से, कुछ कहा भी, आज हमारे घर में पधारिए। कृष्ण कहा, तुम्हारा निमंत्रण हमने स्वीकार कर लिया, मैं किसी का निमंत्रण नहीं ठुकराता, किसी का भी, तो तुम्हारा निमंत्रण कैसे ठुकराऊं, किंतु अभी नहीं, अभी समय आने पर मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा,
है ना।
और तब कृष्ण ने क्या किया, देखते देखते ही, वो तो कोई सोच नहीं सकती, जब कृष्ण ने उसको ठोड़ी में हाथ लगाया, अपने पैरों से उसके पैरों को दाब दिया, और एक ठोड़ी में हाथ लगा, दूसरा पीछे, न जाने क्या किया, एक सेकंड का अंदर में एकदम सीधी सरल हो गई। पहले कुबड़ी थी आठों अंगों की, कहां स्तन इधर में गया, कभी इधर में लग गया, उधर में हाथ हाथ और पैर सब, अब सुंदर मुखमंडल तो था ही, और उसके सौंदर्य में चार चांद लग गए, परम रूपसी, कमर पतली हो गई, तक्षल चौड़ा हो गया, और परम सुंदरी जैसे सौंदर्य के जितने लक्षण है उसमें आ गए। अब तो रह नहीं सकी, उनके एक दुपट्टे को पकड़, उन्होंने कहा, जा अभी ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं नगर भ्रमण के लिए, और इसके बाद में कल रंगशाला में जाऊंगा, इसके बाद में सारी व्यवस्था करके तुम्हारे घर में आऊंगा। अब शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, भक्ति तीन प्रकार की होती है, प्रेम, और उनमें भी भक्ति में भी उच्च अवस्था में तीन प्रकार की नायिकाएं होती हैं। एक नायिका होती है साधारण, दूसरी होती है सम्मंजसा, तीसरी होती है समर्था। समर्था माने क्या, ब्रज की गोपियां ही समर्थ हैं जो कृष्ण को अपने प्रेम से वशीभूत कर देती हैं। उनमें स्वार्थ का लेश नहीं है, काम का लेश नहीं है, जो कुछ करती हैं कृष्ण की सेवा के लिए करती हैं, अपना श्रृंगार तक भी जो करती हैं वो सब कुछ करती हैं बस कृष्ण की सेवा के लिए, और उनका प्रेम ऐसा समर्थ है जो कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ है, इसलिए ये समर्था है। कहीं भी कोई दाग नहीं है, कोई भी स्वार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इनका ऐसा निश्चल प्रेम कृष्ण को भी वशीभूत करने में समर्थ है, इसलिए इसको समर्थारति कहते हैं। दूसरी बात, द्वारका की उनकी पत्नियां हैं महिषियां विवाहिता, इनमें भी प्रेम है, इनका प्रेम अनुराग तक है, कभी कभी महाभाव की छाया आती है, आभास, इनमें कृष्ण को प्रेम करती हैं, किंतु इनका प्रेम विभाग है, विभक्त है, अपने बेटों पर है, पति पर भी है, इधर भी है, उधर भी, घर के काम काजों में विभक्त है, और इनमें कुछ कभी कभी काम के द्वारा उनकी सेवा करेंगी, कुछ अपने भोग की लिप्सा भी थोड़ी सी है, आभास, किंतु जागतिक जैसा नहीं, नहीं तो मुक्ति नहीं हो सकता, भजन करके ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं, उनकी स्वभाव प्रेम में ही कुछ ऐसा है, अपने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तो सब चीज है, किंतु गोपियां जैसा समर्थ नहीं है जो कृष्ण को वशीभूत कर दें, क्योंकि इनका प्रेम ऐसा उच्च कोटि का महाभाव युक्त मादन मोद युक्त नहीं है, इसलिए सम्मंजसा, सम्मंजसा माने क्या कहते हैं, सम्मंजस माने इसलिए सम्मंजस है, यह सम्मंजसा प्रेम है, जिस प्रेम में अपने भोग की लिप्सा हो, सुख की लिप्सा हो, कृष्ण से भी सुख की लालसा हो, तो इसको प्रेम की कोटि में कैसे रखेंगे? इसको प्रेम की कोटि में नहीं रखा जाएगा, किंतु यहां रखा है ने? जब इस जगत में जब हम भजन करते हैं साधन की अवस्थिति में, अपिचे सुचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रे मंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही क्षेत्रम भवति धर्मात्मा स्वस्थ शांति निगच्छ। इस जगत में भी एकांतिक रूप में कृष्ण का आश्रय करने वाला, यदि उसमें दुराचार भी है तो उसको साधु समझो, शीघ्र ही सबको छोड़ करके वो शुद्ध परम भक्त बन जाएगा, धर्मात्मा बन जाएगा। उसका दोष मत देखो, उसका निंदा मत करो, तो इस जगत में ही ऐसी है। तो उस जगत में यदि एक शत्रु है, उतना उनको मारने के लिए आई तभी उसको सदगति दे दी, अगासुर बकासुर को सदगति दे दी, शत्रु भाव से, काम भाव से, भक्ति भाव से, भय से, क्रोध से, स्नेह से, संबंध से, जैसे भी कृष्ण के साथ में संबंध हो और उनका भजन करे तो कृष्ण उनको सदगति दे देते हैं। तो यदि कंस और जितने शत्रु भाव से भजन करना, शिशुपाल इत्यादि को कृष्ण ने सदगति दे दी, किसी को अपना द्वारपाल जो थे जय विजय उनको वो गति में पहुंचा दिया और सबको गति दी, तो काम भाव से ही हो, यदि कृष्ण को उसने चाही, काम भाव था ये बात ठीक है, कृष्ण को चाह, अब ये देखना है जो कृष्ण को छोड़कर के और किसी को चाह रही है कि नहीं, ये देखो उसका प्रेम एकांतिक है या बहुगत है। वो कृष्ण के अतिरिक्त कृष्ण से काम चाह, बात ठीक है, और उसके द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करना और अपने को भी प्रसन्न करना चाहती है, भोग की लिप्सा है, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के पास में, कंस इत्यादि के पास में उसकी प्रीति है कि नहीं? अच्छा, कंस के तो यहाँ रोज रोज जाती थी तो प्रीति क्यों नहीं है? वो तो राजा था, उसके बाध्य होकर के जाती थी, उसे कुछ पैसे मिलते थे, अपना रोजगार कर करके अपना जीवन का निर्वाह करती थी, किंतु उसके प्रति जो प्रेम या कंस का भी नहीं उसके प्रति, क्यों? और इसकी कितनी दासियां इससे लाखों गुण सुंदर हैं, तो इसे क्यों वो अपनी प्रीति करने जाए? इसलिए कंस का भी इसके प्रति ये बड़ी सुंदर सेवा करती है और ये बड़ी आर्टिस्ट है, ये तो उसके प्रति था, इसलिए काफी पैसा देता था, जिससे उसके जीवन, उसके लिए भी राजभवन बना दिया था, अपने नौकरानी को भी, किंतु उसके प्रति कोई बुरी नीयत नहीं थी और इसकी भी उस कंस के प्रति कोई ऐसा नहीं था। इसलिए इसका प्रेम जो था, चाहे काम भाव था, ये केवल कृष्ण ही के प्रति प्रथम बार हुआ। इसके पहले तक अभी तो 12-14 वर्ष की अभी थी, अभी प्रेम, अभी काम भाव भी विकसित नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ, इसका भी कारण है। क्या कारण? रामलीला, वो समय सुपर्णखा बन करके राम के पास गई, उनका रूप देख करके लुप्त हो गई और अपने को समर्पण कर दिया। जो कृष्ण को समर्पण कर देते हैं राम को, फिर उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब देखा, यदि हमको इसने दे दिया और हमने उसको ग्रहण कर लिया, उसके प्रेम को, अब ये किसको साथ में प्रेम नहीं करने देंगे, एकांतिक बना लेंगे, इसलिए उसको नाक कान काट लिए। जब किसी से ये प्रेम नहीं करेगी, कोई दूसरा इसको प्रेम न करे, तो वो तो वैसे ही बीत गया है ना। और दूसरे समय में आप कुब्जा बनाया, तब तक के लिए कुब्जा बनाया जब तक मैं आ नहीं जाऊं और हमको समर्पण किया, इसको तो ग्रहण करना है, इसलिए तो ग्रहण करना है, तो अब इसको ग्रहण कर ही लिया है और साक्षात रूप में ग्रहण करना है, तो तब तक के लिए इसको ऐसे बनाऊं कुब्जा कुवर, जो कोई इसे प्रेम न करे, आइए भी किसी से प्रेम न करे, इसलिए उसको कुब्जा बना दिया। और जब समर्पण, जब अपना इस शरीर को भी समर्पण कर दिया, तो उन्होंने क्या किया कृष्ण, ऐसा कर करके उसको परम सुंदरी बना दिया और उसको ग्रहण कर लिया। अब इसको गति क्या होगी बतलाओ, उस जगत में, गोलोक में ये कुब्जा बड़ी सुंदरी हो करके जो उसने इच्छा की वो भी होगा, किंतु महिषी की दासी बन सकती है, किंतु अब उसका स्थान ही अलग है मथुरा, इसलिए कृष्ण ने उसे ग्रहण कर लिया है और उसको बैकुंठ से ऊपर की गति दी सदा के लिए। उनके साथ में नहीं रहेगी, इसीलिए कहा थे ये मथुरा में रहेगी और ये साधारणी नायिका रहेगी, इसलिए इसको साधारणी नायिका ग्रहण कर लिया, क्योंकि इसमें कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरे में काम नहीं है। तो जिसको कृष्ण के प्रति काम हो और कृष्ण के अतिरिक्त नहीं हो, इसलिए इनको नायिका मान लिया। अरे भाई वहाँ द्वारका मथुरा में सभी क्या वैसे ही हैं? जैसे ब्रज है गुप्त सब ब्रज में माधुर्य भक्ति वहाँ तक है, अगासुर बकासुर तो वहाँ है, तो उन वो उनकी कोटी में गोपियों की कोटी में आएंगे गोपों की। हाँ तो रति के विभाग में भी वो उनकी कोटी में नहीं आएगी। मथुरा और द्वारका को तो उस समय एक मान लो, सामंजस्य से नीचे की गति इसकी होगी, साधारण लाइफ। इस तरह से कृष्ण ने उसको ये भाव दे करके उससे काफी प्रेम अंगीकार कर दिया, निर्मल बना करके गोलोक में उसको कोई गति दे दी। गौर प्रमाण। अब इसके बाद में कल मैं सवेरे वृंदावन जाऊंगा 9 बजे के करीब, और 4 बजे के पहले 4 बजे 5 बजे तक लौट आऊंगा। यहाँ पर सभा होगी, ब्रह्मचारी लोग यहाँ पर नीचे ही सब व्यवस्था करेंगे। हम जैसे कि स्वागत के समय होता है ना, जब पहली बार गया वहाँ पर वैसे ही बिछा देंगे। ये रमेश और वो क्या है पुरंदर इत्यादि ये सब व्यवस्था करें नीचे, जैसे तकिए जोता दे देना। किसी को हमने निमंत्रण नहीं किया है, तो अभी सारे लोग आएंगे और हम लोगों में जो रहेंगे वही दो चार वक्तृता करेंगे और इसके बाद में सबको प्रसाद वसाद कुछ दे देंगे। और फिर परसों सुबह में मैं दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा और वहाँ एक दिन रह करके दूसरे दिन बॉम्बे में जाएंगे। 6-7 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम है, बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है, और इसके बाद में वहाँ से हम लोग विदेश चले जाएंगे। व्यास पूजा से करीब करीब 10-12 दिन पहले हम आएंगे। इसके पहले हमारे ब्रह्मचारी लोग नियमित रूप में, जैसे ये आरती इत्यादि हो रही है, नियमित रूप में आएंगे, हरिनाम ठीक से करेंगे, परस्पर कोई गोलमाल नहीं करेंगे। विशेष करके मैं निश्चिंत रहूं जैसे हाँ सब काम ठीक चल रहा है। आरती नियमित रूप से सभी लोग आएंगे और नियमित रूप में पाठ प्रवचन हो सवेरे, और लोग पाठ कुछ लोग करेंगे साधारण रूप में होगा, और शाम को प्रेमानंद जी हैं या और कौन है जो वो है, या जो हमारे परमेश्वरी जी हैं, कालाचांद जी हैं सबसे अच्छे, कालाचांद जी हैं, वहाँ पर प्रवचन करेंगे शाम को। और सवेरे में ये ब्रह्मचारी लोग सब पाठ करेंगे, उसमें चैतन्य भागवत है, चैतन्य चैतामृत है, जैव धर्म है, ये सब विधिवत सब पाठ हो। ये हमारे जो कीर्तन वाले हैं नन्नूमल जी हैं, दामोदर जी और लोहमन सुखा जी हैं, इनके भैया हैं कौन, मनोहर लाल जी, ये सब आएंगे और यहाँ पर कीर्तन इत्यादि व्यवस्था रहेगी। वृंदावन में वैसे ही चलेगा, और हमारे तो डिवोटीज वेस्टर्न डिवोटीज और ईस्टर्न डिवोटीज दे ऑल्सो दोज विल बी हियर, दे शुड अटेंड एवरीथिंग हियर आर वृंदावन, एंड दोज हु आर गोइंग विथ मी इन अवर टूर दे विल बी अस, सो एवरीथिंग शुड गो ऑन वेरी इजिली। आई थिंक दैट जा रहे हैं जैसे बहुत से तो आप लोग सभी जैसा होगा वैसा लोग करेंगे। व्यवस्था ठीक रहे। हम सुने कि हाँ यहाँ पर भी ठीक चल रहा है और हम भी संवाद बीच बीच में देंगे। दो महीने का समय बहुत कम है, झट चले आएंगे। गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण।